है संकेत का, अभिसार का, कि कल अथवा आज रात्रि में कहां लीला होगी, तो उसी स्थान पर सांकेतिक रूप से बातचीत किया जाता था, वहीं से संकेत दिया जाता, बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी। वहां पर गोपियां और भगवान के कोई मित्र हैं, सखा हैं, तो स्वयं भगवान निर्धारित करते थे कि कहां किस वन में आज की आगामी लीला होगी, तो इसलिए उसका संकेत नाम है। और आपने दर्शन किया हुआ संकेत देवी, अधिष्ठात्री देवी है उस स्थान का, संकेत देवी है, उसका आपने दर्शन किया होगा। इसके अतिरिक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी, छह गोस्वामियों में से एक है गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी का वहां पर भजन कुटी है, देखे ना आप लोग, छोटा सा जगह है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का वहां पर भजन कुटी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी काफी समय तक यहाँ भी रहे, ऐसे उनका मेन मुख्य निवास स्थान था वृंदावन में, जहाँ इस समय राधा रमन जी का त्रिविग्रह है, मंदिर है, लेकिन कुछ समय के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ भी निवास किए थे। और वहां पर एक स्थान का आपने दर्शन किया, रासस्थली स्थान है, जहाँ पर कुछ ऐसे सिलेक्टेड जगह है जहाँ भगवान की रास लीलाएं होती हैं। ऐसे तो भगवान की रास लीला प्रत्येक जगह पर होती है, लेकिन जिस स्थान पर श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण रास लीला के उपरांत जब थक जाते हैं, वहां बैठते हैं, तो उस स्थान को रास लीला, उसी को सुरक्षित किया गया है। नृत्य तो घूम घूम पर पूरे जंगल में होता था, लेकिन नृत्य के पूर्व अथवा बाद में जहाँ पर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण बैठते थे, उसी को राष्ट्रस्थली के रूप में निर्धारित किया गया है। तो वह है संकेत। उसके पूर्व जो था उसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रेम सरोवर, और संक्षिप्त में प्रेम सरोवर की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रेम सरोवर का प्राकट्य कैसे हुआ, उसके विषय में संक्षेप में चर्चा की है। भगवान की जो माधुर्य लीला है ब्रज में, तो प्रेम सरोवर भी उसमें एक अन्यतम है, कुछ विशिष्ट सरोवर है, स्थान है जहाँ भगवान की अतरंग लीलाएं, माधुर्य लीलाएं होती थी। जैसे राधा कुंड है, सूरज कुंड है, ये संकेत है, और भी ऐसे ऐसे स्थान है, तो वह भी एक भगवान की अतरंग और माधुर्य लीला का स्थान है, प्रेम सरोवर। और बरसाना के विषय में जिसने हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो हम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और हम लोगों का स्थान जो था बहुत छोटा छोटा पड़ता था, तो उसमें हम लोगों ने दर्शन किया था, आप उसको स्थान को देखे ही होंगे, सबसे महत्वपूर्ण परिक्रमा मार्ग में जो स्थान था वह था सांकरी खोर। उसी स्थान पर भगवान बरसाना एरिया में गोपियों से दूध और दूध से बने जो पदार्थ हैं, दही इत्यादि का दान इकट्ठा करते थे। दान तो एक बहाना था ही, मुख्य रूप से भगवान गोपियों को वहां पर तंग करते थे, हरास करते थे, ऐसे वह हरासमेंट भी गोपियों को अच्छा लगता था। एक वहां की लीला है संक्षेप में, मैं एक दो मिनट में समाप्त करता हूं। एक दिन की बात है कि गोपियां एक तरफ से दूध और दही माखन लेकर दूसरे किनारे जा रही थी, तो भगवान वहां पर गोप सखाओं के साथ है, गोपियों के जितने पात्र थे केवल दान ही नहीं सब छीन लिया। किसी गोपी के पास जो दूध था तो पूरा दूध ले लिए, दही था तो दही ले लिए, किसी का माखन था तो माखन भी ले लिए, तो गोपियों के पास कुछ नहीं बचा। और यह जिस दिन की लीला का वर्णन किया जा रहा है, उस दिन श्रीमती राधा रानी के सिर पर दही था, दही उस दिन बेचने जा रहे थे, उस दिन दूध अथवा माखन नहीं ले जा रही थी दही। तो भाई कहे भगवान ने क्या किया कि दही सब छीन लिया, गोप सखाओं की सहायता से दही छीन लिया और दही खा गए, चाहे बंदरों को बांट दिया। और इसके बाद उनके मटका था, मिट्टी का जो पात्र था, उसको भी फोड़ दिया। श्रीमती राधा रानी दूसरे जगह जहाँ दान बिहारी जी का मंदिर आपने दर्शन किया है, वहां पर श्रीमती राधा रानी जाकर बैठ गई, रो रही थी। उसका सर्वस्व लूट गया, दही तो गया ही और मटका भी था वो भी नष्ट हो गया। तो स्वाभाविक रूप से घर के लोग पूछेंगे, माँ पूछेगी अथवा ससुर जो को पूछेंगे कि वो कहाँ गया। तो राधा रानी रो रही थी, एक जगह बैठ कर बहुत उदास चेहरे से बैठी थी, एकांत में ऐसा बहुत दुखी हृदय था बैठी थी। तो ललिता अथवा विशाखा किसी सखी ने जाकर कहा कि क्यों इतना दुखी हो। श्रीमती राधा रानी ने बताया ऐसा ऐसी घटना घटी। वो सखियां भी जानती थी कि ऐसी घटना घट गई, मैं इसीलिए दुखी हूं। तो ललिता अथवा विशाखा ने समझाने का प्रयत्न किया कि दूध तथा दही नष्ट भी हो जाएगा, इससे क्या अंतर पड़ जाएगा, हमारे यहाँ तो लाखों लाखों गाय हैं और प्रतिदिन दूध और दही का उत्पादन होता है। राधा रानी आप चिंता मत करो, दुखी होने के लिए बहुत भारी कारण नहीं है कि 3-4 लीटर 5 लीटर ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर दही बर्बाद हो गया। वही बर्बाद क्या हो, भगवान ले लिए, भगवान खाए, गोप सखा खाए, तो उसमें दुखी होने की बात नहीं है। तो उस समय श्रीमती राधा रानी ने एक बात कही थी, इस बात को आप लोग याद रख सकेंगे, राधा रानी ने क्या कहा था, दुख का कारण है कि नहीं 10 लीटर ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर दही होगा, 10 लीटर नष्ट हो गया तो क्या होगा, रोज तो दही बनता है। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा एक बात कही है, उस बात को आप याद रखेंगे ना। राधा रानी ने कहा कि भगवान दही ले लिए इसकी हमें थोड़ी भी चिंता नहीं है, सच में कोई चिंता बल्कि प्रसन्नता है, लेकिन दान के बहाने से, दान लेने के, दही के दान लेने के बहाने से भगवान ने क्या किया है, मेरा हृदय अपने साथ ले गए हैं। तो चिंता में रो रही हूँ उसके लिए कि मेरे पास हृदय ने, हृदय तो ले गए, दान का तो बहाना था, दही लेने का बहाना था कि दही के बहाने से उन्होंने हमारा हृदय ले लिया, तो मैं दही तो फिर भी कल जमा लूंगी, दूध होगा गाय का दोहन करके उसे गर्म करके, दही तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन विशाखा जी और बताओ कि भगवान मेरे मन लेकर चले गए हैं, उसको कहाँ पाऊंगी, तो मेरा दुख है, मैं विषण अवस्था में हूँ अपने मन के लिए, दही के लिए नहीं। दही जो गिराए सो तो फिर ही जमाई ली हूँ, यही उन्होंने गिरा दिया तो उसको तो फिर मैं जमा लूंगा, लेकिन दही दान के बहाने से उन्होंने मेरा मन ले लिया, चुरा लिया, उसको मैं कहाँ पाऊंगी। तो मेरे दुख का कारण है दही का नष्ट करना नहीं, बल्कि मेरे मन को उन्होंने नष्ट कर दिया, चुरा लिया, इसलिए मैं इतनी दुखी हूँ। तो वहां हम पीछे पीछे जाकर कह रहे हैं वहां की लीला है, वह भगवान की लीला है सांकरी खोर की। वहां पर आपने ध्यान दिया होगा सांकरी खोर में तो जो पत्थर है तो कहीं कहीं सफेद हो गए हैं, ध्यान दिया आपने, कोई बताया नहीं, ऐसे काला पत्थर है थोड़ा सा, इतना सा स्पॉट है व्हाइट रंग का, कई एक जगह ऐसा है। तो जब दान लेते समय दही का छीना झपटी में कई कई जगह कुछ दही गिर गया पत्थर पर, तो अद्यावधि वह दही का जो रंग अभी भी पत्थर पर बना हुआ, सफेद बना हुआ, दूध का बना हुआ, माखन का बना हुआ है दोनों तरफ से। अरे यह नंदगांव है जहां हम लोग जा रहे हैं, भगवान का आविर्भाव मथुरा में हुआ था और उसी रात्रि के समय भगवान को वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर पर, माँ जसोदा के घर पर पहुंचा दिया था गोकुल में। भगवान गोकुल में लगभग सवा तीन वर्ष तक, 3 वर्ष 4 महीने लगभग भगवान गोकुल में रहे। उनका उनकी बाल्य लीलाएं गोकुल में हुई। और जब भगवान लगभग 3.25 वर्ष के थे तो वहां से वे यमुना जी को पार करके आ गए वृंदावन में। वृंदावन में जो छत्तीकरा जो गांव है उसी स्थान पर रहे भगवान। वहां भी भगवान लगभग 3-3.5 वर्ष तक निवास किए। और इसके बाद भगवान नंदगांव आ गए। तो नंदगांव भगवान का अपना गांव है, परमानेंटली भगवान यहीं रहते हैं नंदगांव में। और यहीं से भगवान द्वादश वनों में प्रतिदिन सुबह के समय गोचारण के लिए गायों के साथ जाते हैं। हम लोग वर्णन सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि अक्रूर जी वृंदावन में आए थे कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए। तो वृंदावन आए थे मतलब कहाँ आए थे, नंदगांव आए थे। आप लोग 84 कोस की भूमि में भ्रम कर, सभी वृंदावन है एक दृष्टिकोण से, सभी द्वादश वनों को भी इकट्ठा वृंदावन ही कहा जाता है। तो बस अक्रूर जी आए थे मथुरा से, नंदगांव आए थे और यहीं से भगवान को मथुरा ले गए थे। हम लोग प्रथम दिन यात्रा कर रहे थे, वृंदावन से जा रहे थे मथुरा। एक स्थान था अक्रूर घाट, याद है ना? कौन वहाँ कथा बताए थे अक्रूर घाट, क्या बताए थे? लंबी कथा बताए, ठीक है, कम से कम इतना याद है। तो यहाँ से ले जा रहे थे तो दोपहर के समय वहाँ पहुंचे थे। सुबह में भगवान को लेकर चले थे और वहीं पर उन्होंने संध्या वंदन आदि क्रिया के लिए, स्नान के लिए यमुना जी में प्रवेश किया था और यमुना जी के जल में भगवान का दर्शन किया था। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आए थे यहीं से, अक्रूर जी नंदगांव से भगवान को मथुरा ले गए थे। और एक और भी व्यक्ति की चर्चा चलती है कि बहुत बड़े यात्री थे वृंदावन के, वृंदावन यात्रा लोगों ने किया है, बहुत महान व्यक्ति, उनको स्वयं भगवान कृष्ण भेजे थे वृंदावन। तो वो भी आए थे यहीं पर नंदगांव में। वो कौन व्यक्ति है? उद्धव। उद्धव जी को भगवान स्वयं भेजे थे कि आप वृंदावन जाओ, नंदगांव जाओ। तो नंदगांव में जब आए थे उद्धव जी, तो उद्धव जी और गोपियों का संवाद इसी क्षेत्र में, जहाँ आप लोग बैठे हैं ऐसे, वो मैं मुख्य मंदिर थोड़ा सा दूर है, झाड़ियों के पीछे है, छोटा जगह है, इसलिए हम लोग वहां नहीं जाएंगे। क्षेत्र की दृष्टिकोण से यह भी उद्धव क्यारी की एरिया है। तो इन्हीं इसी क्षेत्र में बैठकर उद्धव जी ने जो भगवान का संदेश लाए थे गोपियों के लिए, तो गोपियां यहाँ बैठी थी, श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियां बैठी थी और इसी स्थान पर उद्धव जी ने गोपियों को सांत्वना दिया था, भगवान का संदेश दिया था। तो हम लोग थोड़ा सा, आप लोग आ रहे हैं, दोनों ही बातें कही जा सकते, लोकनाथ महाराज आने वाले हैं, लोकनाथ महाराज किसी एक कथा को कहेंगे, हमें पता नहीं है कौन सी कथा प्रस्तुत करेंगे, परंतु मैं उद्धव जी की यात्रा का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। एक दिन की बात है, भगवान यमुना जी में स्नान करने कर रहे थे मथुरा में, पानी इतना था उसमें स्नान कर रहे थे, तब तक एक फूल पद्म पुष्प बहता हुआ आ रहा था। तो स्वाभाविक जिज्ञासा पर भगवान ने पद्म पुष्प को लिया, तो पद्म पुष्प को सौरभ से वो समझ सके कि इस पद्म पुष्प का, कमल के पुष्प का श्रीमती राधा रानी से के स्मेल से मिलता जुलता है फ्रेग्रेंस, उसको श्रीमती राधा रानी ने फेंक दिया था, वो प्रवाहित होते जा रहा था, उसी को भगवान को श्रीमती राधा रानी की याद आ गई और भगवान मूर्छित जैसा होने लगे। यदि उद्धव जी नहीं वहां होते तो भगवान वहां डूब जाते, गिर पड़ते, बह जाते, लेकिन उद्धव जी जैसे तैसे भगवान को तट पर लाए और भगवान से उद्धव जी ने पूछा कि आप इतना विकल क्यों हो रहे हैं, इतना दुखी क्यों हो रहे हैं। तो उद्धव जी ने, भगवान ने कहा कि मुझे इस पुष्प के संपर्क से ब्रजवासियों की याद आ रही है, अपनी माँ की याद आ रही है, अपने पिताजी की याद आ रही है, हमारे गोप सखा हैं उनकी याद आ रही है, हमारी गोपियां हैं उनकी याद आ रही है, गायों की याद आ रही है, ब्रज भूमि की याद आ रही है। और उद्धव जी, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे नंदगांव ही जाना चाहिए, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, इस कथा को हम एक जगह फिर से प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों के पास एक घंटा लगभग समय है अभी। हम महाराज से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से, अक्रूर जी की यात्रा अथवा
मतलब